الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا نومكم سباتا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا زدنا علما. تو یہ ہماری کلاس امور خانداری میں حسن انتظام کے موضوع پر ہوا کرتی ہے، جو کہ ہمارے حضرت ذوالفقار احمد نقشبندی رحمتہ اللہ علیہ کے سلسلہ دروس پر مشتمل ہے. ایکچولی جو انہوں نے کچھ سالوں پہلے اعتکاف، رمضان المبارک کے اعتکاف کے پروگرام میں کیے تھے. تو ان میں سے ہم نے پہلا درس جو ہے وہ ہاؤس ہولڈ مینجمنٹ کا، یعنی امور خانہ کا مکمل کیا. پھر اس کے بعد ہے اس کے بعد ریلیشن شپ مینجمنٹ، یعنی تعلقات میں کھانا، وہ والا درس ہم نے پھر پڑھ کے مکمل کیا. اور اس کے بعد پھر نیند کا نظم، یعنی سلیپ مینجمنٹ کے اوپر آج کل ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں. تو سلیپ مینجمنٹ میں ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے، جو آپ کے سامنے شاید سکرین کے اوپر بھی ڈسپلیڈ ہوگا، کہ نیند کا سائیکل یہ کیا چیز ہوتی ہے. تو اس میں سب سے پہلے تو ہم نے نیند کی 5 سٹیجز پڑھ کے مکمل کر لی تھیں، جو کہ آج کل جو ہے 4 سٹیجز میں سائنسدان بیان کرتے ہیں. تو حضرت نے شاید جہاں جس وقت یہ تحقیق کری ہوگی، جو کہ آج سے یقیناً 10-12 سال پہلے یہ تحقیق کری تھی، تو اس وقت جو ہے وہ شاید 5 سائیکل جو ہے وہ حضرت نے کہیں پہ پڑھے ہوں گے، لیکن آج کل جو ہے نا وہ یہ 5 سٹیجز پڑھے ہوں گے، لیکن آج کل یہ 4 سٹیجز کے اندر ہی مرج کر دیے گئے ہیں. پہلے 3 سٹیجز جو ہیں وہ N1 N2 N3 کہلاتے ہیں، اور یہ 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 جو 3 سٹیجز ہیں انہی کو جو ہے وہ نان REM سٹیجز بھی کہتے ہیں، نان ریپڈ آئی موومنٹ سٹیجز. اور اس کے بعد پھر چوتھا سٹیج جو ہے اس کو ریپڈ آئی موومنٹ سٹیج کہا جاتا ہے. تو یہ ہم نے سٹیجز پڑھ لیے تھے. پھر اس کے بعد نیند کا سائیکل کا جو اگلا عنوان تھا وہ بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ دیا تھا، کہ بھائی ہر انسان کا جو نیند کا سائیکل ہوتا ہے نا، جو کہ ان 5 سٹیجز یا 4 سٹیجز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے، تو یہ یا تو 90 منٹ کا ہوتا ہے یا 120 منٹ کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا 90 سے 120 کے درمیان کا کوئی ٹائم ہوتا ہے، جو کہ ایک بندے کا نیند کا سائیکل ہوتا ہے. اس ایک سائیکل کے اندر وہ اپنے یہ چاروں نیند کے سٹیجز مکمل کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. اور جب مکمل کر لیتا ہے تو پھر دوبارہ سے وہ سائیکل شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ سائیکل کا تو مطلب ہی ہے نا. سائیکل کو سائیکل کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ اس کے اندر گھومنے والے پہیے لگے ہوئے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ پہیے چونکہ سائیکلک روٹیشن میں چلتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں، تو اسی وجہ سے جو بھی چیز گھومتی ہے نا تو اس کو سائیکل کہہ دیا جاتا ہے انگریزی کے اندر، ٹھیک ہے. تو رات کو جب ہم سوتے ہیں تو 90 منٹ میں ایک سائیکل پورا ہو گیا، پھر دوبارہ سے وہ سائیکل شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. اور پھر جو ہے وہ 90 منٹ میں دوسرا سائیکل پورا ہو گیا، پھر دوبارہ سے شروع ہو گیا، یعنی N1 دوبارہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے. پھر وہ N4 تک مکمل ہوا، اور پھر N1 پہ آپ دوبارہ پہنچ گئے، پھر وہ جو ہے وہ N4 تک مکمل ہوا، پھر آپ N1 پہ دوبارہ پہنچ گئے، پھر وہ N4 پہ جا کے مکمل ہوا، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ سائیکل چلتے رہتے ہیں. اور جو ہم نے آپ کو بتایا تھا نا کہ بھائی آپ اپنا سائیکل کیسے ڈٹرمن کریں، جیسے کہ حضرت نے یہاں پہ لکھا تھا کہ چنانچہ ہر بندے کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو نیند کا سائیکل ہے وہ کیا ہے. گھڑی کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ جب میں سوتا ہوں تو مجھے 2 گھنٹے لگتے ہیں یا 1.5 گھنٹہ لگتا ہے. تو یہ جملہ بڑا کنفیوزنگ سا لگ رہا تھا. ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے لیے بس اتنا سا کرنا ہوگا کہ آپ جب آپ لیٹے سونے کی نیت سے، تو اس وقت جو ہے نا وہ گھڑی کے اوپر جو ٹائم ہے اس کو نوٹ کر دیں. अपने बराबर में कोई कागज रख लें, उस टाइम को आप उस कागज पे लिख दें और फिर आप जो है वो लगने सोने की कोशिश में, ठीक है, यानी उसके बाद कुछ और मत करें, बस बस उसके बाद फिर आप आंखें बंद करें और दुआ पढ़ें, ठीक है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ये सोने की दुआ है ना, सबसे छोटी वाली जो दुआ होती है सोने की, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया, ए अल्लाह मैं तेरे नाम के साथ मरता भी हूं और जीता भी हूं, मेरा जीना मरना तेरे नाम के साथ है, अल्लाहुम्मा बिस्मिका, ठीक है, और फिर उसके बाद आप कोशिश करते रहें, जितनी देर में भी नींद आए आ जाएगी, फिर जब आप उठेंगे, ठीक है, तो उस वक्त आप टाइम देख लें कि क्या टाइम है, ठीक है, तो एक काम तो आप ये करें कि टाइम देखें कि क्या टाइम है और उसको जल्दी से लिख लें, ठीक है, और फिर उसके बाद जरा अपने दिमाग में सोचें कि मेरी इस वक्त कैफियत क्या है, क्या मेरी कैफियत जो है वो फ्रेश है या मैं गुनूदगी की हालत में हूं, ठीक है, अगर गुनूदगी की हालत में है ना, तो इसका मतलब यह है कि आपका साइकिल पूरा नहीं हुआ, आपका एक साइकिल पूरा नहीं हुआ, और अगर आप फ्रेश फील कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आपका कम से कम एक साइकिल पूरा हो चुका है, ठीक है ना, और अगर आपका जो है वो टाइम आपने देखा और वो सोने के वक्त के टाइम से यानी क्या कहते हैं 90 मिनट, 3 घंटे कितना बनते हैं, 180 मिनट, ठीक है, यानी आप 3 घंटे के बाद उठें, तो 3 घंटे का मतलब यह है कि आपका एक साइकिल जो है वो 90 मिनट का था और दूसरा साइकिल जो है वो फिर 90 मिनट का था, तो इस तरह से 300, ये 180 मिनट हो गए, ये दो साइकिल हो गए आपके, ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना वो साइकिल को अपना आप डिटरमिन कर सकते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या लिखा कि नींद की लास्ट स्टेज में ख्वाब आता है, मुझे ये जानना था कि इंसान बार बार क्यों ख्वाब में आते हैं जबकि दिन भर उसके बारे में क्या, कि मुझे ये जानना था कि इंसान बार बार क्यों ख्वाब में आते हैं जबकि दिन भर उसके बारे नहीं सोचा जाता, इंसान बार बार आपके ख्वाब में, कोई इंसान आपके बार आपके ख्वाब में बार बार क्यों आता है जबकि आपने सारा दिन जो है वो उसके बारे में नहीं सोचा होता, ये आपका सवाल है, ठीक है, आपने सारा दिन किसी इंसान के बारे में नहीं सोचा है, फिर आप रात को सोई हैं तो कोई इंसान आपके ख्वाब में आ रहा है तो क्यों आ रहा है, तो इसका जवाब बड़े मजे का एक तो यही है कि आप उनसे पूछ लिया करें कि क्यों आ रहे हैं आप बार बार मेरे ख्वाब में, सही है, मुझे क्या पता वो क्यों आ रहे हैं आपके ख्वाब में, ठीक है, और दूसरी बात ये है, ये जो आप समझ रही हैं ना कि जिसके बारे में आप दिन में सोचेंगी वही आपके ख्वाब में आएगा, ऐसा तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कि जिनके बारे में आप सोचेंगी वही आपके ख्वाब में आएंगे, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ये किसने कहा आपको कि जिसके बारे में सोचा जाता है वही ख्वाब में आता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, ख्वाब की किस्में होती हैं, ठीक है, ख्वाब की किस्में होती हैं, ठीक है, टाइप्स होती है, उनमें से एक टाइप ये है कि दिन में आप जिस चीज के बारे में, जिस चीज के बारे में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कोई हाथी हो, चाहे वो जो है वो आपका किचन हो, चाहे वो आपका कोई रिश्तेदार हो, जिस चीज के बारे में भी आप दिन भर सोचती रहती है ना, तो वो चीज आपको ख्वाब में आती है, लेकिन वो ख्वाब की सिर्फ एक किस्म है, ठीक है, लेकिन ख्वाब की दूसरी किस्म ये है, ये है कि एक ख्वाब तो जो शैतान आपके जहन में ख्यालात डालता है, बेशक आपने दिन भर वो ख्यालात ना सोचे हो, लेकिन रात के वक्त शैतान जो है ना वो आपके दिमाग को कंट्रोल करके आपके दिमाग के अंदर जो है ना वो ख्यालात डाल रहे हैं, वो शैतानी ख्यालात हैं और वो डरावने किस्म के होंगे या जो है वो उल्टे सीधे ऊटपटांग किस्म के ख्यालात होंगे, तो ये ख्वाब की दूसरी किस्म, और तीसरी किस्म ये है कि आपका यानी रब जो है अल्लाह ताला वो आपको जो है ना वो सैर करवा रहे किसी जगह की, ठीक है, जिसको आलमुल अमसाल कहते हैं, उस जगह को आलमुल अमसाल कहते हैं, उसकी आप सैर कर रहे हैं, ठीक है ना, आपकी रूह आपके जिस्म में से पार्शियली निकल गई है और वो आलम अमसाल तक पहुंच गई है और वहां पर जाकर के फिर वो चीजें देख रही है जो अल्लाह ताला दिखाना चाहते हैं, वो चीजें वो देख रही है, ठीक है, तो वो चीजें जो आप देख रहे हैं ना तो वही आपका ख्वाब होता है, और वो ख्वाब जो होता है फिर सच्चा ख्वाब भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो आलम-उल-अम्साल में आपको दिखाई जा रही है चीजें, ठीक है। तो अब वहां पर जो है वो कोई इंसान है जो कि आपको दिखाया जा रहा है, तो वो आपको वो ख्वाब में नजर आ रहे हैं, ठीक है, चाहे आपने उसके बारे में सारे दिन ना सोचो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है जी। तो बहरहाल नेक्स्ट टाइम कोई मिले तो पूछ लीजिएगा उनसे कि आप क्यों आ रहे हैं मेरे ख्वाब, मजाक कर रहे हैं खाली, ये सीरियसली नहीं कह रही। अच्छा तो ये हो गया नींद के साइकिल के बारे में, और आखिरी जुमला जो हजरत ने लिखा था या बयान में फरमाया था वो ये था कि ये जो अल्लाह वालों के बारे में कहते हैं कि थोड़ा सोकर भी फ्रेश उठते हैं, तो असल में अल्लाह ताला उनको तौफीक दे देते हैं कि वो एक साइकिल के बाद उठते हैं तो वो इसी तरह फ्रेश होते हैं जिस तरह लोग 8-9 घंटे की नींद पाने के बाद फ्रेश होते हैं, ठीक है। तो ये हजरत ने लिखा है फ्रेश होने के बारे में ना, भाई आपका एक साइकिल मुकम्मल होकर के आप उठ जाते हैं तो वो एक अल्लाह ताला की तरफ से एक निजाम बन गया होता है कि आप एक साइकिल के बाद आपकी आंख खुल जाती है, ठीक है, या 2 साइकिल के बाद आपकी आंख खुल जाती है, ठीक है। तो ये जो जाहिर है जब साइकिल मुकम्मल हो गया आपकी डीप स्लीप N3, N3 में आपने डीप स्लीप कर ली, फिर आप N4 में आए तो वो REM स्लीप आपने कर ली, फिर उसके बाद आप उड़ गए, तो ये आपका एक साइकिल मुकम्मल हो गया, ठीक है। तो जब भी आप एक साइकिल मुकम्मल करने के बाद उठेंगे ना तो फिर आप फ्रेश ही होंगे, ठीक है, चाहे आप अल्लाह वाले हो चाहे आप अल्लाह वाले ना हो, ठीक है ना, चाहे आप अल्लाह वाले ना हो चाहे आप अल्लाह वाले हो, यानी नेक मुत्तकी हो या नेक मुत्तकी ना हो, आप फिर भी फ्रेश ही उठेंगे, ठीक है। तो फिर हजरत क्या फरमा रहे हैं आपके फ्रेश उठते हैं, तो भाई अल्लाह वाले तो फ्रेश उठते हैं लेकिन जो सो कॉल्ड नॉन अल्लाह वाले हैं या हमारे जैसे गुनाहगार मुत्तकी गैर मुत्तकी वगैरह, ठीक है, तो वो जब एक साइकिल के बाद उठेंगे तो वो भी फ्रेश उठेंगे, तो फिर फर्क क्या होगा अल्लाह वालों में और नॉन अल्लाह वालों में, चलें आप बता दो फर्क क्या होगा आप में और हम में, यानी आप अल्लाह वाले हैं हम जो है वो ऐसे ही हैं बस, ठीक है, तो फर्क क्या होगा, फर्क क्या होगा, कोई बताएगा फर्क क्या होगा अल्लाह वालों की नींद में और नॉन अल्लाह वालों की नींद में फर्क क्या होगा। दोनों फ्रेश उठ रहे हैं, जब साइकिल मुकम्मल हो गया ना तो उसके बाद फिर दोनों फ्रेश उठेंगे जैसे हजरत ने यहां पे लिखा है, तो फिर व्हाट इज द डिफरेंस, अल्लाह उनके वक्त में बरकत दे देते हैं। ये तो मैं भी कह सकता था भाई कि अल्लाह उनको जन्नत में अता कर देंगे और जो है वो जो गैर मुत्तकी होगा उसको जहन्नम में जाना पड़ जाएगा, तो ये भी फर्क हो गया, ये भी फर्क हो गया। तो इस तरह से तो आप हजारों लाखों फर्क बता सकते हैं अल्लाह वालों में और गैर अल्लाह वालों में, मतलब गैर अल्लाह वाले से मुराद ये नहीं कि अल्लाह ने उनको नहीं बनाया होता, वो अल्लाह के बंदे नहीं होते, बल्कि अल्लाह का हुक्म मानने वाले नहीं होते तो उनको फिर गैर अल्लाह वाले कह दिया ऐसे ही, ठीक है। तो मुत्तकियों में और गैर मुत्तकियों में फर्क क्या होता है फिर, वो जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, उनकी जिंदगी में बरकत होती है इनकी जिंदगी में बरकत नहीं होती, ये हम आपसे नहीं पूछ रहे, ये हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह क्या आपको पता है ये वाली बात, हम आपसे ही नहीं पूछ रहे। अल्लाह वालों का तो सोना भी इबादत होता है, वो सोते हैं ताकि उठकर मजीद दीन का काम करें, अल्लाह वालों के सोने की नीयत अलग होती है, ठीक, ये बिल्कुल एग्जैक्टली माशाल्लाह बिल्कुल यही फर्क होता है, ठीक है, मुत्तकियों में और गैर मुत्तकियों में बिल्कुल यही फर्क होता है। फ्रेश दोनों उठते हैं, साइकिल मुकम्मल करने के बाद दोनों फ्रेश उठते हैं, ठीक है ना, क्योंकि बायोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं, बायोलॉजिकली दोनों सेम होते हैं, उनकी आंख उनके जिस्म के अंदर कोई सोने के बने हुए फेफड़े नहीं लगे हुए होते, और गुनाहगार के जिस्म के अंदर कोई तांबे के बने हुए फेफड़े नहीं लगे हुए होते, दोनों के जिस्मों के अंदर एक जैसे फेफड़े लगे हुए होते हैं, एक जैसे जो है वो कलेजा लगा हुआ होता है, एक जैसे जो है वो किडनीज लगी हुई होती हैं, एक जैसे जो है वो हर चीज लगी हुई होती है, बिल्कुल सेम होते हैं दोनों, ठीक है ना। फर्क ये होता है कि जो अल्लाह वाले होते हैं ना उनकी जिंदगी में नेक मकसद होता है, उनकी जिंदगी एक नेक अल्लाह की रजा वाले मकसद के लिए होती है, ठीक है, और इनकी जिंदगी जो है वो या तो बेमकसद होती है या शैतान ने उनको कोई मकसद लगा दिया होता है, जो कि एक ही बात है, शैतान ने इनको बेमकसद या कोई बुरा मकसद लगा दिया होता है। तो ये फ्रेश उठते हैं तो ये अल्लाह की रजा का काम करना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फ्रेश उठते हैं ना तो अपनी फ्रेशनेस को इस्तेमाल करते हुए ये अल्लाह की रजा का काम करना शुरू हो जाते हैं, चाहे वो इबादत करें, चाहे वो तिलावत करें, चाहे वो दीन का कोई मेहनत करें, चाहे वो किताब पढ़ें, ठीक है ना, चाहे वो जिक्र करें, वो अपने काम में लग जाते हैं। और ये जो है ना ये फिर अपने बुरे काम में लग जाते हैं, फ्रेश उठने के बाद ये बुरे कामों में लग जाते हैं या टाइम वेस्टिंग के अंदर लग जाते हैं। ये फर्क होता है दोनों के अंदर, ठीक है ना, ये दे फर्क होता है। समझ में आ गया जी क्या फर्क होता है अल्लाह वालों में और गैर अल्लाह वालों में, क्या फर्क होता है? ये फर्क होता है उनकी जिंदगी में अच्छा मकसद होता है, वो उठते हैं तो मकसद से लग जाते हैं अपने, और उनकी जिंदगी में कोई मकसद नहीं होता, टाइम वेस्टर, ठीक है। अच्छा क्या फर्क नहीं होता है, ये हमने आपको एक फर्क तो बता दिया, एक तो बता दिया कि क्या फर्क नहीं होता, क्या फर्क नहीं होता, क्या बताया अभी आपको, इन दोनों के दरमियान क्या फर्क नहीं होता, कि उनका फेफड़ा भी यही बना होता है जिस मटेरियल से अल्लाह ताला ने बनाया है, टिश्यूज और बॉडी सेल्स, जो भी आप डॉक्टर हजरात ज्यादा बेहतर जानते हैं, और इनके भी जिस्म के जो ऑर्गन्स होते हैं ना वो वैसे ही होते हैं सारे के सारे, जैसे उनके जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं वैसे इनके जिस्म के ऑर्गन्स होते हैं, तो ये कोई फर्क नहीं होता है इनमें, ठीक है। अच्छा एक और भी फर्क नहीं होता इन दोनों में, एक और भी फर्क नहीं होता इन दोनों में, वो क्या, कोई कोई और बताएगा, ये जरा मुश्किल है। एक और भी डिफरेंस नहीं होता इन दोनों में, वो क्या? असल में एक तो हम आपसे पहले पूछ रहे थे ना कि इन दोनों में क्या फर्क होता है, वो बात अल्हम्दुलिल्लाह तय हो गई, आप में से किसी ने बहुत सही जवाब दे दिया, ठीक है। अब हम ये पूछ रहे हैं कि इन दोनों में क्या फर्क नहीं होता, एक का तो जवाब हमने खुद ही दे दिया, ठीक है, कि दोनों के ऑर्गन्स सेम मटेरियल से बने हुए होते हैं, ठीक है, और दूसरा फर्क हम आपसे पूछ रहे हैं कि और दूसरा फर्क क्या नहीं होता इन दोनों के दरमियान, ये जरा मुश्किल सवाल है, शायद कि कोई जवाब दे, शायद पिछली क्लास में कुछ कहा भी था इस बारे में अगर किसी को याद हो। अच्छा इन्होंने लिखा है कि अगर हम लोग भी सोने से पहले ये सोचकर सोए कि सोकर उठकर अल्लाह ताला, सो के उठकर अल्लाह की इबादत करेंगे तो क्या हमें भी सवाब मिलेगा? क्यों, आपको क्यों नहीं मिलेगा, ये जवाब देना पहले, आपको क्यों नहीं मिलेगा, इसका तो जवाब आप देंगे, मैं को थोड़ी इसका जवाब दूंगा, क्यों नहीं मिलेगा? अगर आप ये नींद से पहले नियत करके सोएंगे कि सो के उठ के अल्लाह की इबादत करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा आपको सवाब, इसका जवाब दें। बेवकूफी का सवाल करेंगे ना तो उसका जवाब यही मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि हम लोग मुत्तकी नहीं है, अल्लाह के बंदी जब आप जो है वो ऐसी नियत करके सोएंगे तो मुत्तकी बन जाएंगे ना फिर, तो मुत्तकी अल्लाह ताला बनाएंगे ना आपकी नियत को देखते हुए, ठीक है ना। ये क्या बात हुई कि आपको मुत्तकी बनने के लिए आपको कोई खास मिट्टी चाहिए होती है क्या, मुत्तकी बनने के लिए आपको क्या कुछ, आप ऊंची छलांग मारनी आ जाती है और गैर मुत्तकी को छलांग मारनी नहीं आती, इस वजह से अब आप मुत्तकी नहीं बन सकते हैं। मुत्तकी कैसे बनते हैं फिर, कैसे बनते हैं मुत्तकी, ऐसे ही तो बनते हैं मुत्तकी, नियत करते हैं अल्लाह ताला से, दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, जो है वो रुजू करते हैं, मुत्तकी बन जाते हैं, खलास, इतना आसान है मुत्तकी बन जाना, ठीक है ना, ये कोई बेवकूफी की बातें सोचने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग मुत्तकी नहीं है, इसलिए अल्लाह की बंदे आप अल्लाह की रजा की नियत रखें, ठीक है ना, और थोड़ा सा बस थोड़ा सा कार्रवाई डाल दें, बस बस अल्लाह ताला फिर कर लेंगे, आगे अल्लाह ताला संभालेंगे फिर उसके बाद। वल्लजीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन, ठीक है ना, आप करके देखें फिर उसके बाद देखिएगा आगे से क्या होता है, ठीक है जी। गुनाह एक और फर्क होता है, जो गुनाह नहीं, ये तो लफ्ज के इस्तेमाल में ही तय हो गया ना कि भाई वो गुनाह नहीं करते और ये गुनाह हम जैसे लोग गुनाह करते हैं, भाई ये तो मुत्तकी की डेफिनेशन में ही आ गया, क्योंकि मुत्तकी का मतलब ही होता है कि गुनाह ना करना। हम दूसरा फर्क पूछ रहे हैं आपसे, दूसरा फर्क उन्होंने लिखा कि दोनों को एक वक्त में नींद आती है, दोनों को एक वक्त में नींद आती है। ये क्या बात हुई, समझ नहीं आया आपका जवाब। सेल रिकवरी दोनों की होगी, बीमारियों का इलाज दोनों का होगा। तो ये तो आपने ये जवाब दिया कि हाँ आपने सही जवाब दिया है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे तरीके से सही जवाब दे दिया। ठीक है, इन्होंने सही जवाब दे दिया लेकिन जरा दूसरे तरीके से दिया। ठीक है, वो क्या है, इन्होंने जवाब दिया है कि सेल रिकवरी दोनों की होगी, क्वेश्चन मार्क लगाने की जरूरत नहीं थी, कि जब अल्लाह वाले सोते हैं ना तो उनकी भी जो बॉडी रिपेयर होती है, उनकी भी बॉडी रिपेयर होती है सोने में, और जो गैर मुत्तकी होते हैं, गुनाहगार होते हैं, बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले होते हैं, वो भी जब सोते हैं तो उनकी भी बॉडी रिपेयर होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आप लोगों को बताई थी, है ना। जब अल्लाह वाले सोते हैं तो उनका भी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, डीप स्लीप वाले फेज में जाकर के उनका भी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, उनका भी बीपी ड्रॉप होता है। ठीक है, और जो गैर मुत्तकी होते हैं उनका भी बॉडी टेम्परेचर ड्रॉप होता है, उनका भी बीपी ड्रॉप होता है। ठीक है, तो ये भी फर्क नहीं है दोनों के दरमियान। ठीक है, उनका भी जो है ना वो टिश्यू ग्रोथ हो रही होती है डीप स्लीप वाले फेज के अंदर। ये डीप स्लीप वाला फेज बस इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इन्होंने बाकायदा वो सेंसर्स लगा लगा करके, अब तो सुना है कि वो पहनने वाले सेंसर्स भी आ गए, वो भी जो है ना वो आपकी सारी चीजों को मेजर कर लेते हैं। बाकायदा अस्पताल जा करके आपको अपना ईईजी नहीं करवाना पड़ता, बल्कि घर में भी आप अपने डिवाइस लगा करके ना वो भी आपको मॉनिटर करके बता देती है कि आपका ये सब कुछ हो रहा है। तो बहरहाल, तो अल्लाह वालों की भी टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर हो रही होती है और दूसरे लोगों की भी, आम लोगों की भी टिश्यू ग्रोथ एंड रिपेयर हो रही होती है। ठीक है ना, और इम्यून रेगुलेशन ये भी हमने आपको बताया था, इम्यून रेगुलेशन उनकी भी हो रही होती है, इम्यून रेगुलेशन इनकी भी हो रही होती है। ठीक है, और भी बहुत सारे फर्क, और भी बहुत सारे काम हो रहे होते हैं जो कि दोनों में हो रहे होते हैं, मुत्तकियों में भी हो रहे होते हैं और गैर मुत्तकियों में भी हो रहे होते हैं। ठीक है, तो अब इससे नतीजा निकालें, अब इससे कंक्लूजन निकालें कि क्या फर्क नहीं होता दोनों में। नींद दोनों की बुनियादी जरूरत है, ठीक है ना भाई, भाई रिपेयर करने की जरूरत तो दोनों की है। तो अब इससे नतीजा ये निकाल लें, बहुत आसान सा नतीजा है, कि अगर अल्लाह वालों की भी नींद की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं होगी ना तो क्या होगा, और अगर गैर मुत्तकी इंसान की भी नींद की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो क्या होगा, क्या दो अलग अलग चीजें होंगी? नहीं, बल्कि सेम चीज होगी। ठीक है ना, उसकी भी नींद की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी तो भी वही होगा जो इसकी नींद की रिक्वायरमेंट पूरा ना होने पर होगा। वो क्या चीज क्या होगा भाई, क्या होगा? तो सवाल किया है क्या? तो बहुत आसान सा सवाल है जी, बीमारियां। ठीक है, बीमारियां, बीमार होंगे। एग्जैक्टली, ठीक है ना, अल्लाह वाले भी बीमार होंगे और गैर मुत्तकी वो भी बीमार होंगे। ठीक है, दोनों बीमार होंगे, ये भी फर्क नहीं है दोनों के दरमियान, ये भी फर्क नहीं है दोनों के दरमियान, दोनों बीमार होंगे। ठीक है ना भाई, दोनों बीमार होंगे, फिर से बोलूं, दोनों बीमार होंगे। ठीक है, तो ये भी डिफरेंस नहीं है, ये भी डिफरेंस नहीं, जिस तरह उनके ऑर्गन्स की मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस नहीं है ना दोनों की, उसी तरह उनके इस मैकेनिज्म में भी डिफरेंस। भाई ये मैकेनिज्म जो है वो शैतान ने को थोड़ी बनाया है, ये शैतान ने जो मैकेनिज्म बनाया है कि भाई अल्लाह वालों के इसमें ये शैतान का अमल दखल नहीं होता, क्योंकि शैतान ने ये मैकेनिज्म बनाया था तो जाहिर है अल्लाह वालों के ऊपर तो शैतान का असर नहीं होता, और जो है वो जो गैर मुत्तकी होते हैं उनके ऊपर शैतान का असर हो जाता है। नहीं, ये शैतान का बनाया हुआ मैकेनिज्म नहीं है, ये शैतान का बनाया हुआ निजाम नहीं है, बल्कि ये किसका बनाया हुआ निजाम है, ये रहमान का बनाया हुआ निजाम है, रहमान, राइट, ये अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है, ये शैतान का बनाया हुआ निजाम नहीं है कि उसका जोर जो है वो इन्ना इबादी लैस लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर कि कुछ मेरे बंदे ऐसे होते हैं जो मेरे खास बंदे होते हैं, इन्ना इबादी मेरे खास बंदे, लैस लका अलैहिम सुल्तान, तुम्हारा उनके ऊपर कोई जोर नहीं चलेगा। तो इस वजह से ना जो बीमारियां है ना, तुम जो बीमारियां उन पर डालना चाहते हो उनके उनके अंदर ये बीमारियां पैदा नहीं होंगी, नहीं, क्योंकि शैतान नहीं करता ये शैतान के अमल दखल में नहीं है ये चीज, ये शैतान का निजाम नहीं है, ये तो अल्लाह का बनाया हुआ निजाम है ना, ठीक है ना। तो अल्लाह का जोर तो चलता है, शैतान का जोर नहीं चलता ना, अल्लाह का तो जोर चलता है ना, ठीक है ना, दोनों पे चलता है ना कि नहीं चलता, ठीक है। तो इस वजह से बीमारियां अल्लाह वालों को भी होती हैं, और बीमारियां जो है ना फिर गुनाहगार लोगों को भी होती हैं, इसमें भी दोनों सेम है, ठीक है जी। आगे चलें, तो आगे हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हाँ, नींद की स्टेजेस का तज़किरा कुरान मजीद में, कुरान मजीद में नींद की मुख्तलिफ स्टेजेस का तस्करा है, ठीक है। क्या N1, N2, N3 के नाम से है? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। पहली बात तो कुरान मजीद अरबी में है, और N1, N2, N3 जो है ये तो अंग्रेजी जुबान की टर्म्स है। उसी तरीके से यानी इशारा, तस्करे से मुराद ये इशारतन तस्करा मिलता है जब आप गौर और तदब्बुर करते हैं कुरान मजीद के ऊपर ना, अफला या तदब्बरून अल कुरान, तो जब आप तदब्बुर करते हैं कुरान मजीद के ऊपर तो फिर आपको इशारे अल्लाह ताला अता फरमाते हैं अपने कुरान मजीद से। तो हमारे मशायख ने इशारतन ये बात करी है। ये कुरान मजीद में नींद की मुख्तलिफ स्टेजेस का तस्करा है। पहली स्टेज को सिना या नौम कहते हैं, सिना तुम वला नौम, इसका तस्करा कुरान मजीद में ऐसे आया है, ला ताखुदुहु सिना तुम वला नौम, कि ना उसको ऊंघ आती है और ना नींद आती है, ठीक है। तो ये एक तरह की स्टेज हो गई ऊंघ। इसको क्यों कहा, जैसे कि हम भी अपनी जुबान में ऊंघ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, जब आप वेकफुलनेस से स्लीप की तरफ जा रहे होते हैं तो इसको ऊंघ आना कहते हैं ना, ठीक है। तो अल्लाह ताला का ये मामला नहीं है कि उसको ऊंघ आ जाती है, बेशक पूरा नहीं सोए लेकिन ऊंग तो आ गई ना, तो ऊंग में भी गफलत हो जाती है, अल्लाह ताला को इतनी भी गफलत नहीं होती। और नौम, अगर आप इसको ऊंग के बाद वाला स्टेज कंसिडर करें कि जिसमें कि इंसान सो जाता है, अगरचे के डीप स्लीप में नहीं जाता, ठीक है, लाइट स्लीप मोड में होता है, अल्लाह ताला को लाइट स्लीप मोड भी नहीं होती, ठीक है ना, तो N1 होती है अल्लाह ताला को, ना N2 होती है अल्लाह ताला को, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो दूसरी स्टेज है उसको नुआस कहते हैं। फरमाया इध युगशी कुमुन नुआस कि और वो वक्त भी याद करो कि जब उसने तुम पर गुनूदगी तारी कर दी थी। ये कब हुआ था, ये गजवाए बदर के मौके पर हुआ था, ठीक है। गजवाए बदर के अंदर क्या हुआ था कि सहाबे कराम के ऊपर जो है ना, वो अल्लाह ताला ने जो नींद तारी करी थी ना, वो नींद, उसको आज के दौर में क्या कहते हैं, उसको आज के दौर में कोई आपको से अगर बताए कि जो नींद सहाबा पर गजवाए बदर में अल्लाह ताला ने तारी करी थी, गजवाए बदर शुरू होने से बस पहले, ठीक है, तो उस नींद को अंग्रेजी में आज के दौर में लोग क्या कहते हैं, वो कह सकते हैं, बता सकता है। अच्छा, जाने दो, खवातीन ने जवाब तो दिया है, सही है लेकिन आधा है, ठीक है। इन्होंने जवाब दिया है नैप, NAP, लेकिन ये पूरा नहीं है, नहीं, स्लम्बर तो नहीं कहते इसको, इसके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग, हाँ माशाल्लाह, पावर नैप, इसको कहते हैं पावर नैप, ठीक है, यानी आप नैप ले रहे हैं, नैप उसको कहते हैं ना कैलूला, ठीक है, खाने के बाद जो है वो कैलूला करना, तो उसको अंग्रेजी में नैप करना भी कहते हैं, NAP, ठीक है। लेकिन ये नैप जो है वो ऐसी हो कि जिसके अंदर बंदा जो है ना बिल्कुल फ्रेश होकर के उड़ जाए, ठीक है। तो ये जो नैप होती है ना इसको पावर नैप कहते हैं, और ये बहुत थोड़े से टाइम की होती है, ठीक है। तो इसमें गोया के आप जो है वो N1 और N2 यहां तक पहुंचते हैं और उसके बाद आप उठ जाते हैं, ठीक है। तो N1 और N2 करने के बाद जो आप उड़ जाते हैं ना, अभी आप N3 में दाखिल नहीं हुए हैं, तो इसमें फिर आपकी जो है ना वो एक तरह से एक फ्रेशनेस आ जाती है, और इसके बुनियाद पर आप फिर आगे बड़ा जबरदस्त तरीके से फंक्शन कर सकते हैं। पावर नैप इसको कहते हैं अंग्रेजी में आजकल, ठीक है। तो इनके ऊपर जो नुआस तारी हुई थी ना, तो ये देवर मेड फ्रेश टू गो एंड फाइट, ठीक है। सबसे खतरनाक जो काफिरों के साथ लड़ाई हुई थी, सबसे खतरनाक लड़ाई वो ये बदर की लड़ाई थी, ठीक है। पहली भी थी और सबसे खतरनाक भी थी। वो क्यों सबसे खतरनाक, तो हम समझते हैं ना वो होगी जब आगे जो है वो 10 बंदे हों लड़ने के बाद लड़ने वाले, और यहां पर एक हो, तो ये सबसे खतरनाक लड़ाई होती है। नहीं, बल्कि सबसे खतरनाक लड़ाई कौन सी होती है, आपसे फिर पूछे क्विज क्लास, सबसे खतरनाक लड़ाई कौन सी होती है जो कि बदर में हुई थी, गुरिल्ला वॉर। गुरिल्ला वॉर तो सबसे आसान लड़ाई होती है, क्योंकि वो छुप छुप करके आपने मारना होता है, आप सामने ही नहीं आते दुश्मन के, तो वो तो सबसे आसान लड़ाई हो गई जी, ठीक है। माशाल्लाह इन्होंने सैटरडे की क्लास को गौर से सुना था, तो इनको याद है बच्चों वाली जो क्लास होती है, ठीक है। क्योंकि ये जो लड़ाई थी ना, ये क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स के साथ, क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स के साथ थी, और सिर्फ अल्लाह की खातिर थी, ये अपनी नफ्स की खातिर नहीं थी। जैसे हमारी फैमिली मेंबर्स से लड़ाई हो जाए ना, तो उसके बाद फिर आप उनसे लड़ना शुरू कर दें, तो इसको सबसे खतरनाक लड़ाई, वो खतरनाक दूसरे तरीके से बन जाती है, वो आपको जहन्नुम में ले जाती है। वो जो आप बेवकूफी के रीजंस की वजह से अपने फैमिली मेंबर से लड़ना शुरू हो जाए, तो वो भी खतरनाक लड़ाई होती है, लेकिन वो जहन्नुम में ले जाती है, ठीक है। सहाबे कराम बदर के अंदर जो अपने क्लोजेस्ट फैमिली मेंबर्स के सामने दूबदू आ गए थे ना, ये अपने नफ्स की खातिर नहीं आए थे, ये बेवकूफी की वजह से नहीं आए थे, ये खालिसतन अल्लाह के लिए और अल्लाह के रसूल के कहने पर आए थे, ठीक है। तो ये दुनियावी एतबार से सबसे खतरनाक लड़ाई थी, आखिरत आखिरत के एतबार से सबसे खतरनाक लड़ाई नहीं थी कि इनको जान में ले जाएगी, ठीक है। तो ये अपनों के मुकाबले में थी, ठीक है ना, ये अपनों के मुकाबले में थी, इस वजह से ये सबसे खतरनाक, यानी सबसे मुश्किल लड़ाई एक्चुअली इसको कहना चाहिए, ठीक है। बाप बेटे के मुकाबले पर था, अबू बकर सिद्दीक रतान और आगे उनका बेटा, जो सब मुसलमान नहीं हुए थे, बाद में मुसलमान हो गए थे, और अबू उबैदा बिन जर्राह रतान और आगे उनके अब्बू, ठीक है। और इसी तरीके से भाई भाई ऐसे, एक एक भाई इस तरफ, दूसरा भाई उस तरफ, इस तरह की लड़ाई थी। तो अल्लाह ताला ने इज युगशीहुमुन नुआस, उनके ऊपर नुआस तारी करके उनको पावर नैप दे करके उनको बिल्कुल तैयार कर दिया था इस लड़ाई के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर आगे फरमाते हैं कि फिर इसके बाद जो दूसरी स्टेज है, यानी नेक्स्ट स्टेज जो है, उसको रुकूद कहते हैं। रुकूद, फरमाया वतहसबुहुम अयकाउन वहुम रुकूदुन, के तुम गुमान करते हो, हसीबा यहसबू का मतलब, या हसीबा यहसीबू का मतलब क्या होता है, कि तुमने मेजर, तुमने कैलकुलेट किया किसी सिचुएशन को, तुमने किसी सिचुएशन को एसेस किया, इसको कहते हैं हिसाब करना, कैलकुलेट करना। तो तुम्हारी असेसमेंट ये थी, किनके बारे में बात हो रही है, असहाबे कहफ के बारे में बात हो रही है, कि वो सो रहे होते थे ना, ठीक है, तो लोग आकर के बाहर से अंदर झांकते थे ना, तो उनको वो नजर आते थे सोते हुए, ठीक है। लेकिन जब वो उनको देखते थे लोग, तो तहसबहुम एकाब, एकाज कहते हैं जागा हुआ, ठीक है ना, औ कज़ा यूकिदु एकादन, जागने का वर्ड होता है ये अरबी में, ठीक है। तो तुम उन्हें देखकर ये समझते हो कि वो जाग रहे हैं, वहुम रुकूदुन, वाव हालिया, ये वाव जो है ये हाल बताता है, कि हालांकि हाल ये था कि हुम रुकूदुन, वो तो सो रहे थे, ठीक। तो उर्दू में तो रुकूद का तर्जुमा हम सोने से ही करेंगे ना, ठीक है, तो वो सो रहे थे। तो फरमाते हैं कि ये भी एक स्टेज है। अब हजरत ने यहां पे लिखा नहीं है कि ये कौन सी वाली स्टेज है, ठीक है। लेकिन अगर हम तरतीब के एतबार से देखें तो ऐसा लगता है कि जैसे हजरत यहाँ पे फरमा रहे, ऐसा लगता है कि जैसे हजरत कह रहे हैं कि ये कौन सी वाली स्टेज बनती है, कौन सी वाली स्टेज है, N3। N3 को क्या बताया था आपको, N3 को दूसरा नाम क्या होता है इसका, डीप स्लीप। ठीक है, डीप स्लीप। लेकिन डीप स्लीप में ऐसा तो नहीं होता कि तहसबुहुम अयकादन वहुम रुकूदन, डीप स्लीप में तो ऐसा नहीं होता। इस वजह से ना जो इस फकीर के समझ में आया है कि हजरत ने नाम भी नहीं लिया डीप स्लीप का, यहां पर आगे तो नहीं फरमाया। ये तीसरी और चौथी स्टेज है, ये लंबा वक्त होता है। लंबा वक्त की हद तक खाली बात करिए, अगले पेज के ऊपर जो लिखा हुआ है, तीसरी और चौथी स्टेज को जो है वो आजकल N3 कहते हैं ना, तो इतना ही कहा है कि ये लंबा वक्त होता है, लेकिन ये नहीं कहा कि ये डीप स्लीप वाली स्टेज होती है। तो इस वजह से हजरत की अपनी यहाँ पे बयान की भी जो तहकीक है, ठीक है, और जो साइंसदानों ने की है, तो उसके मुताबिक ये स्टेज कौन सी वाली स्टेज लगती है, ये REM की स्टेज लगती है। ठीक है, ये तो REM की स्टेज लगती है, रैपिड आई मूवमेंट। क्यों? इसलिए कि रैपिड आई मूवमेंट में जब बंदा जाता है तो उस वक्त देखने वाले को लगता है कि जैसे ये जागा हुआ है, क्योंकि उसकी आंखों आंखें जो होती हैं ना वो बंद तो होती हैं लेकिन अंदर मूवमेंट हो रही होती है उनकी। ठीक है, तो देखने वाले को जाहिर है वो जागता हुआ लगेगा कि जैसे बस आंखें बंद की हुई हैं लेकिन जाग रहा है, लेकिन असल में वो सो रहा होता है। तो ये तो REM स्टेज जो है ना, जो कि N4 है। ठीक है, वल्लाहु आलम। ठीक है, अच्छा, इसके बाद फिर फरमाया कि फिर इसके बाद जो बहुत गहरी नींद होती है उसको हजउन कहते हैं। तो गहरी नींद को तो हजरत ने खुद ही पीछे लिखा है ना, डीप स्लीप, तो वो तो N3 होती है। ठीक है, डीप स्लीप, सही। कुरान पाक में आया है, कानू कलीलम मिनल लेली मा यहजउन वबिल असहारे हम यस्तगफिरून। ठीक है, कि वो रात को बहुत कम सोया करते थे और सुबह के वक्त इस्तिगफार किया करते थे। ठीक है, तो यह जाऊन का तर्जुमा उर्दू में जो है ना, कलीलम मिनल लैली मा यह जाऊन, तो उर्दू में तो तर्जुमा करेंगे तो ऐसे ही होगा भाई, क्योंकि उर्दू जुबान के अंदर वो डेप्थ है ही नहीं जो अरबी जुबान के अंदर है। ठीक है, तो अगर हम अरबी जुबान के इस लफ्ज यह जाऊन का सही मफहूम समझने की कोशिश करें ना, तो पता ये चलता है कि यह जाऊन जो है ये असल में N4 नहीं है, बल्कि ये असल में N3 है। N3 यानी डीप स्लीप। ठीक है, तो डीप स्लीप जो है ना, जिसके अंदर इंसान जो है वो बिल्कुल सो गया होता है जाहिरी तौर पर भी और अंदर से भी, डीप स्लीप। ठीक है ना, जिसके अंदर उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप भी होता है, उसका BP भी ड्रॉप होता है, उसकी जो है वो बॉडी रिपेयरिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ख्वाब वाब भी नहीं आते, यानी ख्वाब जब आ रहे होते हैं उस वक्त तो इंसान एक अंदाज से जाग चुका होता है ना। ठीक है, क्योंकि उसका दिमाग जो है वो चलना शुरू हो चुका होता है उस वक्त। ठीक है, तो यह जाऊन जो है ना, ये वो स्लीप होती है कि जिसमें कि उसको कामनेस मिलती है, उसको पीस मिलता है, फिजिकल पीस। ठीक है, फिजिकल पीस और फिजिकल कामनेस उसको मिलती है, उसकी बॉडी जो है वो रिफ्रेश हो रही होती है फिजिकली। ठीक है, तो ये जो डीप स्लीप का टाइम होता है ना, ये बहुत ज्यादा इनका नहीं होता। ठीक है, तो ये लोग जो है वो जो असल रात के सोने का टाइम होता है इशा के बाद से लेकर के तहज्जुद के वक्त का टाइम, तो उसके अंदर जो है ना ये सो रहे होते हैं और इसमें इनकी डीप स्लीप होकर के मुकम्मल हो जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद उनको मजीद की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इन्होंने अपना स्लीप रिक्वायरमेंट जो है, बॉडी रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप जो है वो पूरी कर ली उन्होंने। ठीक है, फिर उसके बाद जो है ना वो सुबह के वक्त, यानी जब तहज्जुद का वक्त होता है, यहाँ पे सुबह से मुराद तहज्जुद का वक्त है, तो वो उठते हुए इस्तिगफार करते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर इनफ वक्त होता है तो उसके अंदर बाकायदा वुजू करते हैं, फिर उसके बाद नमाज पढ़ते हैं, फिर जो है वो जिक्र अस्कार करते हैं, दुआएं करते हैं। ठीक है, लेकिन मशायख ने ये तक लिखा है कि अगर किसी के पास इतना वक्त ना हो ना उसमें कि जिसमें कि वुजू कर सके और नमाज पढ़ सके, ठीक है, तो कम अज कम लेटे ही लेटे वो इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दे, इस्तिग़फ़ार, ठीक है ना। अगर अल्लाह ने आपकी आंख खोल दी है लेकिन इतना वक्त नहीं है कि आप वुज़ू करके जो है वो बाकायदा नमाज पढ़ सकें, तो कम अज कम अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, या पूरा अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बी व अतूबु इलैह, ठीक है। तो जाहिरी एतबार से कम अज कम इसी आयत के मिसदाक बन जाएंगे, क्योंकि इस आयत में अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि वो बिल अस्थारे हम यस्तग़फिरून, वो इस्तग़फार करते हैं, ठीक है। तो लेटे लेटे ये इस्तग़फार तो कम से कम बंदा करे ना, ठीक है जी। तो चुनाचे कुरान मजीद ने नींद के मुख्तलिफ साइकिल्स का तस्करा करके बता दिया कि इंसान की नींद के साइकिल्स होते हैं, ठीक है। मुख्तलिफ लफ्ज इस्तेमाल किए नींद के लिए, और फिर कॉन्टेक्चुअली जब आप उन अल्फाज को देखें तो समझ में आता है कि हाँ ये N1 की बात हो रही है, ये N2 की बात हो रही है, ये N3 की बात हो रही है, और ये N4 की बात हो रही है, ठीक है जी। किसी को कोई सवाल हो तो हज ऑन का भी मतलब समझ में आया कि डीप स्लीप जो है ये इनकी होती है, और चूंकि ये सही वक्त पर ये लोग कर रहे होते हैं डीप स्लीप, ठीक है, जैसे सहाबाए कराम, ताबईन, तबा ताबईन और उनके बाद के जितनी जनरेशन गुजरी थी, जब तक कि ये मनहूस यूरोपियंस गालिब नहीं आ गए दुनिया पर, ठीक है। तो इनके गलबे से पहले पहले तक जो था ना वो ये टाइम होता था, और ये एक मुख्तसर टाइम होता था अशा से लेकर के तहज्जुद का टाइम, और इसके अंदर इनकी काम हो जाता था सारा का सारा, ठीक है, नींद का काम। तो फिर उसके बाद फरमाते हैं, एक मिनट टाइम कितना, 36 हो रहा है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि नींद में हिकमत। तो फरमाते हैं कि ये नींद अल्लाह ताला ने इसलिए बनाई है ताकि इसकी अजमत का इजहार हो। अल्लाह ताला वो जात है जो कायनात के निजाम को चला रही है, मगर उसकी ये शान है कि ला ताखुदुहु सिनतु वला नौम, कि ना उसको ऊंघ आती है और ना नींद आती है। नींद का ना आना अल्लाह ताला की अजमत और किबरियाई की दलील है। इंसान कमजोर है, हम काम करते हैं, हमें नींद भी आती है और हमें ऊंघ भी आती है, ठीक है, बैठे बैठे भी हम सो जाते हैं ना, तो उसको ऊंघ कहेंगे, और लेट करके बाकायदा जो है वो नींद का होना। तो ये सोना जो है ना, ये अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर यानी जबरन, यानी जबरन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि आपकी अपनी जो है ना वो कोई अपनी कोई से नहीं होती उसके अंदर, ठीक है। तो नींद के बारे में एक बड़ी अच्छी बात हमने किसी गैर मुस्लिम की किताब के अंदर पढ़ी, ठीक है, उसने बड़ी अच्छी बात लिखी, काम की बात नहीं, कलम कलमतुल हिकमत अक़वालतुल मोमिन, वही हिकमत की बात आपको कहीं से भी मिल जाए तो वो हक़ बिहा, आप उसके ज्यादा मुस्तहिक हैं ना अगर आप ईमान वाले हैं। तो उस गैर मुस्लिम ने अपनी किताब के अंदर लिखा कि खाना भी हमारी जरूरत है, पीना भी हमारी जरूरत है, लेकिन कोई इंसान अगर भूख हड़ताल पे आ जाए कि मैं नहीं खाऊंगा, जैसे वो आपके इंडिया में जो है ना जिसको गांधी जी की मोटरसाइकिल GMC, ठीक है, तो वो भूख हड़ताल उनकी बड़ी मशहूर है उन साहब की, ठीक है, और भी कोई भूख हड़ताल करता है, तो बाकायदा ऐसा मुमकिन है कि कोई अगर भूख हड़ताल पे आ जाए कि मैंने नहीं खाना है, तो वो ना खाए हत्ता कि उसको मौत आ जाए, ठीक है, यानी इख्तियारी तौर पर खाना छोड़ करके इंसान मौत तक पहुंच सकता है, मर सकता है इख्तियारी तौर पर, उसके पास इतना इख्तियार अल्लाह ने दिया है, खाना छोड़ दे मर जाएगा इवेंचुअली वो 3-4 दिन बाद, ठीक है, पीना छोड़ दे तो वो उससे भी पहले मर जाएगा, क्योंकि बॉडी जब डिहाइड्रेट हो जाती है ना तो ज्यादा जल्दी मौत आ जाती है, तो कोई इंसान पानी छोड़ करके मर सकता है, लेकिन नींद छोड़ करके कोई इंसान डायरेक्टली नहीं मर सकता, मर तो सकता है लेकिन डायरेक्टली नहीं मर सकता, क्या मतलब कि जागे 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 बैठा हुआ है, बैठा हुआ है, बैठा है, और जो खा भी रहा है, पी भी रहा है, लेकिन सो नहीं रहा, तो एक वक्त आएगा कि जब वो ना सोने की वजह से मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बल्कि क्या होगा कि उसको सोना पड़ेगा, चाहे वो ना चाहे उसको सोना पड़ेगा, अल्लाह ताला उसको सुला देंगे, ठीक है ना। अल्लाह ताला उसके ये नहीं होगा कि अल्लाह ताला फरिश्तों को भेजें और फरिश्ता उसके मुंह में खाना डाले ताकि वो ना मरे, नहीं ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला किसी फरिश्तों को भेजें कि पानी डाले इसके मुंह में ताकि ये ना मरे, नहीं ऐसा नहीं होगा। उसका इख्तियार है, नहीं पानी पीना चाहता। हाँ कोई इंसानों में से आकर के उसको फोर्स फीडिंग करे तो वो और बात है, लेकिन फरिश्ता आगे फोर्स फीडिंग नहीं करेगा उसको, ठीक है। लेकिन नींद का मामला ऐसा है कि उसको जो है ना, फिर अल्लाह ताला का निजाम जो कि फरिश्तों के जरिए से अल्लाह ताला दुनिया में चलाते हैं जैसे भी है वो, तो उसको सोना पड़ेगा, वो ही विल हैव टू स्लीप और शी विल हैव टू स्लीप, ठीक है ना। अब मरता वो कैसे है, वो मरता ऐसे है कि वो गलत जगह पे सो जाता है, इस वजह से वो मर जाता है, ठीक है। गलत जगह पे सो जाता है, इस वजह से वो मर जाता है। जैसे गाड़ी ड्राइव कर रहा है, ठीक है ना, अब उसकी नींद पूरी नहीं हुई तो नींद गाड़ी ड्राइव करते हुए उसको ऊंघ आई, इधर जाके उसने गाड़ी मारी, मर गया, ठीक है ना। या जहाज उड़ा रहा था और पीछे पैसेंजर्स बैठे हुए थे तो उधर जो है उसने जहाज जो है वो कहीं पे जाके गिरा दिया और खुद भी मरा और पीछे सारे पैसेंजर्स भी मर गए। इसी वजह से पायलट्स को तो आजकल बहुत ज्यादा सुलाने की फिक्र होती है ना सबको, ठीक है, कि भाई खुद भी मरेगा अगर नहीं सोया तो, खुद भी मरेगा और दूसरे इंसानों को भी मारेगा, उनकी भी इतनी ज्यादा फिक्र नहीं होती लोगों को, लेकिन हमारा इतना मिलियन डॉलर का जो जहाज है ना उसका भी नुकसान कराएगा, ठीक है ना, उसकी ज्यादा फिक्र होती है जहाज वाली कंपनियों को, ठीक है। तो वो इस वजह से ना पायलट्स को वो सुलवाते हैं किसी पर, तुमने बस सोना है, तुमने जागना नहीं है, ठीक है। तो नींद ऐसी मजबूरी की चीज है कि जिस जो कि हमारे इख्तियार में नहीं, सही है। तो ये अल्लाह ताला की हिकमत इसमें अब क्या है कि भाई अल्लाह ताला हमें दिखा रहे हैं कि ये दुनिया मैंने चलानी है, तुमने नहीं चलानी, ठीक है ना। ये दुनिया मेरी है, ये तेरी नहीं है, ये मैंने चलानी है, तुमने नहीं चलानी, ठीक है ना। और हर लिहाज से मैंने चलानी है, जाहिरी तौर पर भी मैंने चलानी है, बातनी तौर पर भी मैंने चलानी है, जिस्मानी तौर पर भी मैंने चलानी है, रूहानी तौर पर भी मैंने चलानी है, अल्लाह ताला ये दिखाना चाहते हैं, ठीक है, कि ला ताखुदुहु सिनतुन वला नौम। अल्लाह को नहीं आती ना ऊंग ना नींद, ठीक है ना। अल्लाह इज डूइंग हिज जॉब 24/7/365, ठीक है ना। तो अब वो पिछली क्लास में पहले हम बहुत डांट चुके हैं आप लोगों को, तो इस वजह से अब वो अल्फाज दोबारा से इस्तेमाल नहीं करेंगे कि भाई तुम ये बेवकूफी की बातें जो कर रहे हो ना कि मैंने करना है, मैंने करना है, मैंने करना है, मैं नहीं करूंगा तो फिर ये काम कैसे होगा। नहीं, तुम अपना काम करो जो तुम्हें करने को कहा गया है, और वो भी तुम बस जितना तुम हैंडल कर सकते हो ना उतना करो, उसके बाद बस अल्लाह ताला के हवाले, अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले, ठीक है। तो फरमाते हैं कि नींद की जिस्मानी घड़ी जो अल्लाह ताला ने रखी है, ये फिर एक लंबा टॉपिक है, सर्केडियन रिदम वगैरह इसके अंदर है, और बहुत यानी जबरदस्त टॉपिक है ये सर्केडियन रिदम। इसकी कुछ डायग्राम भी हैं, वो हम आपके साथ अभी शेयर कर लेते हैं, अगर आपको मौका मिले तो अगली क्लास से पहले उसको थोड़ा सा आप रिसर्च भी कर सकती हैं, या उस डायग्राम को कम अज कम थोड़ा गौर से देख लें। तो अभी की क्लास जो है वो यहाँ पे मुकम्मल करते हैं, किसी को कोई सवाल हो या कोई कॉमेंट वगैरह हो तो आप पूछ सकती हैं, बता सकती हैं। अच्छा, एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है ना, वो अल्लाह ताला ने कहीं से भिजवाई तो वो बहुत ही अजीब चीज थी, वो चाह रहा है कि अभी इसलिए कि अगली क्लास में फिर वो टू टू ओल्ड हो जाएगी, और सर्कैडियन रिदम के साथ उसका इतना ताल्लुक नहीं है, उसका ताल्लुक तो नींद की हिकमत के साथ है जो अभी आपके सामने थोड़ी सी हमने समझाई है, ठीक है। तो किसी ने हमसे शेयर किया कि एक बहुत बड़े अल्लाह वाले गुजरे थे इंडिया में, ठीक है, हजरत फजलुर रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्ला, हजरत फजलुर रहमान गंज मुराद आबादी, गंज मुराद आबाद जो है वो जगह है, तो गंज मुराद आबादी के, तो उन्होंने ना एक बड़ी अजीब बात फरमाई। कहते हैं कि ये जो अमलियात का काम होता है ना, अमलियात पता है ना, अमलियात क्या होता है, जादू टोना जो लोग कर देते हैं ना, तो जादू टोने का तोड़ करने के लिए अमलियात किए जाते हैं, जिसके लिए जो है वो कोई कुरान की आयत हो गई या कोई जो है वो और इस किस्म का चीज पढ़ने के लिए दे देते हैं, ठीक है, तावीज वगैरह भी दे देते हैं। तो वंस इन अ वाइल, कभी किसी कभी कभार कर लेना, या मुआवजतैन के जरिए से जादू टोने का जो है वो सदबाप करने की कोशिश कर लेना, तो वो तो सुन्नत से साबित है ना, वो तो कोई भी कर सकता है एक्चुअली, ठीक है। लेकिन बाकायदा इसको प्रोफेशन बना लेना कि अब जो है ना वो जिसको जादू हो गया वो आपके पास आ रहा है, अब आप उसको जो है वो लिख करके तावीज दे रहे हैं, ठीक है, और जो जिसके पेट में दर्द हो रहा है तो वो आपके पास आ रहा है, वो जी मेरे पेट में दर्द हो गया है शेख साहब, आप जो है ना वो मुझे कोई तावीज दे दें, आपने तावीज लिखा, चाहे आप उसके ऊपर पैसे लेते हो या ना लेते हो, फ्री में भी ये काम करते हो ना, पैसे लेना तो वो तो फिर आपको अपना पेट पालने के लिए पैसे लेने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आप फ्री में भी ये काम करें, आप इधर लो चलो जी ये तावीज पकड़ाया, ये अमलियात पकड़ाया, ये अमलियात पकड़ा, इसको कहते हैं अमलियात का काम करना, ठीक है ना। तो फजल रहमान गंज मुराद आबादी रहमतुल्लाह अलैह का कौल किसी ने नकल करके भेजा, तो उन्होंने फरमाया कि ये जो अमलियात का काम शुरू कर देते हैं ना, यानी बाकायदा मुस्तकलन एज अ प्रोफेशन के तौर पे काम करना शुरू कर दिया, मुस्तकलन काम करना शुरू कर दिया, तो इससे जो है ना उनकी जो अल्लाह ताला के साथ निस्बत होती है ना वो सल्ब हो जाती है, वो अगर अल्लाह ने उनको अता की भी होती है ना कुछ ताल्लुक अपने साथ, वो अल्लाह ताला वापस ले लेते, उसकी वजह क्यों, क्योंकि अमलियात का काम जो इंसान इस तरीके से करना शुरू कर देता है ना, हमारे बुजुर्गों ने भी किया है लेकिन वो इस तरह से नहीं किया है जैसे बाकायदा एक वेल नोन आमिल करता है, वैसे नहीं किया उन्होंने, उन्होंने कभी किसी को तावीज लिया, हमारे हजरत जी भी रहमतुल्लाह ने कभी लिख दिया करते थे, और बड़े और हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने की भी जो है वो है इस तरह का, तो वो भी लिख दिया करते थे, लेकिन लिख दिया करना एक अलग चीज होती है और फुल टाइम इसी काम को अपना काम बना लेना ये अलग चीज होती है, तो जो फुल टाइम अपना काम बना लेते थे ना, तो उसके बारे में फरमाया कि उसकी जो निस्बत होती है ना वो छीन ली जाती है फिर उससे, और उसकी वजह क्या बयान करी कि आमिल को फिर खुदा पर तवक्कुल नहीं रहता, आमिल को खुदा पर तवक्कुल नहीं रहता बल्कि उसके अंदर उजब पैदा हो जाते हैं, और ये खुद थानवी रहमत हजरत अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया इनकी इस बात की तशरीह में कि उसके अंदर ना ये पैदा हो जाता है कि हाँ जी मैंने ये अमल किया था तो इससे ये हो गया, फिर मैंने वो अमल किया था तो उससे जो है वो ये देखो फायदा हो गया और ये फायदा हो गया वो फायदा, उसकी नजर जो है ना वो अल्लाह से हट करके इन चीजों के ऊपर चली जाती है, मैं मेरा काम मेरी मेहनत, तो जब ये मैं पर आ गई तवज्जो तो फिर अल्लाह से तो तवज्जो हट गई ना, ठीक है, तो फिर ये निस्बत उसकी सल्ब होने का सबब यानी उसके छीन लिए जाने का सबब बन जाती है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई आमिल ना तो है और ना हम में इतनी कोई कैपेसिटी है कि हम जाके बने, अल्लाह ना करे कोई बने में से, ठीक है। लेकिन हमारे लिए ये रेलिवेंट बात इस मौके पर क्या थी कि नींद का भी मामला ऐसे ही है कि अल्लाह इज डूइंग इट, हमने तो सिर्फ जो है ना जायज हदूद में रहते हुए और अल्लाह पे निगाह रखते हुए काम करने, हमने उससे आगे बढ़ करके अल्लाह की स्टेपिंग ओवर अल्लाह टर्फ ये हरकत हमने नहीं करनी, ठीक है, हमने बंदा बनना है और हमें बंदा बनने के लिए ही अल्लाह ताला ने पैदा किया है, इसी के लिए हमने जागना भी है और इसी के लिए हमने सोना भी है, ठीक है, ये हमारा जिंदगी का मकसद है, अल्लाह ताला हम सबको बामकसद जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, व आखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।